तो इसमें थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर भी खुशी भी होती है ना कि एक नई और वास्तु बिल्डिंग भगवान की सेवा में बनने जा रही है। तो हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु यानी श्री गौरांग महाप्रभु, इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हाँ, पहले हम इनके नाम से शुरुआत करेंगे। इनका नाम गौरांग महाप्रभु कौन क्यों है? क्योंकि इनका शरीर जो है वो गोल्डन येलो कलर का है, गौर वर्ण का है। राधा रानी का रंग भी वैसा ही है। सूर्य अगर अनेक सूर्य एकत्र होकर अपना प्रकाश देंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? गौर कांति, स्वर्ण कांति। तो वो कांति जो है वो राधा रानी ने श्री कृष्ण के ऊपर ढक दी। उसका कारण यह है कि कृष्ण ने कहा कि आपका हमारे ऊपर जो प्रेम है उस प्रेम का हम अनुभव करना चाहते हैं आपके रूप में। आप हम पर प्रेम करते हैं तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन वो प्रेम जब आप करते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? वो अनुभव करने के लिए हम एक अवतार लेंगे। वो अवतार का नाम है गौरांग महाप्रभु। तो राधा रानी ने कहा कि अगर हम मेरा प्रेम लेकर आप अवतार लोगे तो आप इतने भाव विभोर हो जाओगे कि हो सकता है कि आप जमीन पर बेहोश होकर गिर सकते हो, कांटों में गिर सकते हो, पेड़ की शाखा से गिर सकते हो। तो आपको कष्ट होगा, जख्म होगी, और मुझे ये विचार भी सहन नहीं हो रहा है कि ऐसे आप गिरने वाले हो। इसलिए आप गिरोगे भी तो आपको जख्म या ईजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं मेरी जो कांति है ना, कांति का मतलब क्या होता है? कम्प्लेक्शन। वो कम्प्लेक्शन से मैं आपको ढक दूंगी ताकि आप बचे रहेंगे। वैसे इसलिए कृष्ण भगवान नीले रंग के होने पर भी इस वर्ण के हैं। हृदय में भाव भी राधा रानी का है और वर्ण भी उनका ही है, इसलिए गौर अंग, जिनका अंग गौर वर्ण का हो गया है। और महाप्रभु क्यों? क्योंकि महाप्रभु उसी को कहते हैं जिसमें महाभाव होता है। महाभाव यानी सर्वोच्च प्रेम का भाव जो है, उसके अंदर आठ प्रेम के अंग होते हैं। वो यहाँ पर कहने का स्थान उचित नहीं है क्योंकि बहुत वो बड़ा सब्जेक्ट है। रति, प्रेम, स्नेह, मान, ऐसे प्रकार के आठ प्रकार के प्रेम के स्वभाव होते हैं। वो आठों प्रकार के प्रेम के स्वभाव मिलकर बनता है महाभाव। और वो महाभाव जो है वो केवल तीन व्यक्ति के पास में, एक कृष्ण, एक राधा रानी और एक गौरांग महाप्रभु, और किसी के पास, विष्णु के पास भी नहीं। महाभाव विष्णु कृष्ण का अवतार होते हैं, कृष्ण का स्वरूप होते हैं, लेकिन ये महाभाव का उगम राधा रानी से होता है। राधा रानी से उगम होकर वो कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। और क्योंकि राधा रानी और कृष्ण मिलकर गौरांग महाप्रभु बनते हैं, इसलिए वो गौरांग महाप्रभु के अंदर भी है, इसलिए उनका नाम महाप्रभु है। दूसरी बात, वो आए क्यों? मैंने आपको बताया क्योंकि राधा रानी का प्रेम देखकर हमेशा कृष्ण भगवान दंग रहा करते थे। ये प्रेम का अनुभव उन्होंने एक बार किया था। वो प्रेम का अनुभव जब एक बार उन्होंने किया था तब वो इतने भाव विभोर हो गए थे। वो श्री कृष्ण है, अभी द्वापर युग में है, लीला कर रहे हैं, और राधा रानी और गोपियों को छोड़कर अकेले कहीं चले गए हैं। क्योंकि आप जानते हो उन्होंने गर्व किया था तो उन्होंने छोड़ के चले गए थे। लेकिन जब छोड़ के चले गए थे तो उनको भी रहा नहीं गया उनके विरह में। तो कृष्ण भगवान यमुना जी के किनारे पे एक पेड़ है, उसका नाम है इमली तला, इमली का पेड़ है वो, उसके नीचे तले बैठ गए और राधा रानी की प्रेम की याद करने लगे विरह में। तो वो इतने भाव विभोर हो गए कि उनका शरीर जो उस समय नीले रंग का था वो गौर वर्ण का हो गया। मतलब क्या हो गया? वो राधामय हो गए। कुछ देर बाद राधा रानी वहां पर आई, क्योंकि तो वो भी दुखी थे बहुत। कृष्ण कहाँ गए, कहाँ गए, छोड़ के कहाँ गए, दुखी थे। गीत गाते हुए पेड़ों को पूछते हुए आ रहे थे, कहाँ पर है कृष्ण, कहाँ कृष्ण है। अचानक एक व्यक्ति को देखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, आंख बंद करके बैठा हुआ है। सब कुछ कृष्ण के जैसा ही है, पीताम्बर पहना हुआ है, मोर मंख पहना हुआ है, मुरली यहाँ लगाई हुई है, सब कुछ कृष्ण जैसा है। लेकिन केवल कलर जो है वो गौर वर्ण का है। तो वो आपस में चर्चा करते हैं, कौन है ये व्यक्ति, पूरा हुबेहुब कृष्ण जैसा है, लेकिन हमारे कृष्ण तो सांवले रंग के हैं, ये गौर वर्ण का है। बहुत देर चर्चा किया, समझ में नहीं आया उनको क्या है ये रहस्य। तो फिर उन्होंने कहा, राजा रानी जाकर आप उनको जगाओ, उनके ध्यान में से उनको जगा दो। तो राधा आगे बढ़ती है, उनको स्पर्श करती है। जैसे ही राधा उनको स्पर्श करती है, आंख बंद किए हुए जो भगवान है वो आंख खोल लेते हैं और धीरे धीरे उनका जो गौर वर्ण है वो बदलकर पूरा सांवला हो जाता है। मतलब ही कम्स बैक, वापस अपने भाव विभोर अवस्था से नॉर्मल अवस्था में, जिसको हमारे आध्यात्मिक भाषा में क्या कहते हैं, अंतर चेतना से बाह्य चेतना में आ गए। वो अभी अंदर गए थे बहुत, वहां से बाह्य चेतना में आ गए, अंदर गए थे इसलिए उनका शरीर का रंग बदल गया था। अब बाह्य चेतना में आ गए तो दोबारा उसी रंग को प्राप्त किया जो पहले उनका था। तो राधा रानी ने जब ये देखा चमत्कार ना, गौर वर्ण का धीरे धीरे रूपांतर हो गया, वापस सांवले हो गए, फिर पता चला है तो अपने ही कृष्ण है। लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि ऐसे कैसे हुआ। तो कृष्ण को पूछा उन्होंने, ये ऐसे कैसे हुआ? तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि जब मैंने तुम्हारे प्रेम के ऊपर चिंतन किया, तुमसे अलग होकर तुम विरह भाव में, तुम्हारे ही प्रेम पर मैंने चिंतन किया, तुम्हारे चरणों पर ध्यान किया, उस समय मेरी ये अवस्था हो गई। और ये अवस्था इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी आनंद देने वाली थी कि मुझे लगा कि तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया। समझ में आपको आया? आपने स्पर्श किया तो मैं वापस आया ना, मैं चाहता कि इसी अवस्था में रहूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अनुभव मुझे कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ उसको आपने एंड कर दिया, तो कुछ समय गए हो गया ना, वो मुझे अभी बहुत लंबे समय तक उसका अनुभव करना है। इतना मैं इस भावना से प्रभावित हो गया हूं, इंप्रेस हो गया हूं, भाव विभोर हो गया हूं कि मैंने अभी निश्चय कर दिया है कि मेरा अगला अवतार मैं इसी रूप में लूंगा। और पूरा अवतार तक जितना काल है उसका, उतने काल तक मैं आपके प्रेम का अनुभव करते रहूंगा। तो मुझे पता चले कि आपका प्रेम कितना गहरा है, और आपका प्रेम जब आप करते हो मुझ पर तो आपको क्या उसका अनुभव होता है। आपको समझ में आया बात? जैसे कि आप में से बहुत लोगों का विवाह हो गया है ना, आपके पति है और आप पत्नी हो, तो पत्नी पति पर प्रेम करती है, पति उस प्रेम को प्राप्त करता है, पति उस प्रेम का अनुभव करता है कि मेरी पत्नी मुझ पर प्रेम करती है। लेकिन जब पत्नी अपने पति पर प्रेम करती है तो वो क्या अनुभव करती है? वो प्रेम को करते हुए वो अनुभव पति नहीं कर सकता है। जो अनुभव पत्नी को मिलता है वो पत्नी बनने के बाद उसको मालूम पड़ेगा, पति बनकर उसको अनुभव मालूम नहीं पड़ेगा। पति बनकर वो पत्नी का प्रेम का रिसीव करेगा, मतलब स्वीकार करेगा उसका, लेकिन वो प्रेम करने में पत्नी को क्या सुख है वो नहीं समझेगा उसको। तो वो अगर पत्नी को पूछा जाए कि तुम्हें क्या प्राप्त होता है, तो आप क्या कहोगे? आपको ना मैं बनना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे ना आप, कि जब तक आप हमारे जन्म में नहीं आएंगे, हमारा अवतार नहीं लेंगे, हमारे स्वरूप में नहीं आएंगे, तब तक आपको वो अनुभव नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? मराठी में ना एक कहावत है, जावे त्याचा वंशा तेव्हा कळे, है ना। मछली को जब आप पकड़ते हो समुद्र में तो मछली पर क्या बीतती है उस समय वो समझने के लिए आपको खुद मछली बनना पड़ेगा। फिर जब पकड़ते हैं और बाहर निकालते हैं तो क्या होता है वही आपको तब मालूम पड़ेगा। मछली को देखते हुए जो व्यक्ति है उसको नहीं पता चलेगा, वो तो मछली बनना पड़ेगा उसके लिए एक्चुअली क्या हो रहा है समझने के लिए। उसी प्रकार से पत्नी जो प्रेम करती है पति के ऊपर, वो पत्नी बनना पड़ेगा आपको, फिर समझेगा कि वो क्या भावना होती है उसके पीछे। वो भावना मैं कल आपको उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम है उसको समझना बहुत मुश्किल है। इतना गहरा प्रेम, इतना सर्वोच्च प्रेम, सर्वोत्तम प्रेम विश्व में कोई भी नहीं कर सकता है। इतना वो महान प्रेम है कि कृष्ण भी बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, ये भाई क्या है, मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ, सब ज्ञान मेरी ओर से आता है, लेकिन ये ज्ञान मेरे पास नहीं है कि उनको क्या अनुभव हो रहा है। इतने मोहित हो जाते हैं कि वो तय करते कि मैं आऊँगा अगली बार उसी भाव को लेकर आऊँगा। तो राधा रानी ने कांति को भी ढक दिया, कॉम्प्लेक्शन अपना बना लिया, भाव अपना दे दिया और चैतन्य महाप्रभु बनकर आए वो। 48 साल उन्होंने पृथ्वी पर लीला किया और खुद भी अंदर से वो दिव्य अनुभव प्राप्त किया और बाहर से लोगों को उसी प्रेम का हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से अनुभव दिया। भगवान जब अवतार लेते हैं ना तो एक साथ कई काम कर लेते हैं। देखो यदा यदा ही धर्मस्य, जब अधर्म की वृद्धि होती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए वो आते हैं, ये एक काम करते हैं ना, साथ में धर्म की स्थापना भी कर रहे हैं। फिर परित्राणाय साधु नाम, मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए भी आते हैं, वो भी साथ में करते ना, कि साथ में करते कि नहीं करते। विनाशाय च दुष्कृताम, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का विनाश करने के लिए भी आते हैं और धर्म की स्थापना भी करते हैं। कितने काम करते हैं, एक साथ में अनेक उद्देश्य को पूर्ण करते हो, मल्टीपर्पज। मराठी में क्या बोलते हैं, एका दगड़ा दोन पक्षी, ऐसे कई प्रकार के हेतु पूर्ण करते हो। तो अंदर से ये अनुभव कर रहे हैं राधा रानी का प्रेम क्या है और बाहर से वो प्रेम का सार जो है वो सब लोगों को बांट रहे हैं, खुद भी अनुभव कर रहे हैं, लोगों को भी दे रहे हैं। अभी हम जो समझो किसी व्यक्ति को भक्त बनने का आदर्श चाहिए, कोई आदमी चाहिए अपने को कि भक्ति कैसे की जाती है दिखाओ, तो भगवान के अलावा और भक्ति का आदर्श उदाहरण कौन दे सकता है। तो भगवान ही खुद भक्त बनते हैं राधा रानी का भाव लेकर, और वो भक्त बनकर हम सबके लिए भक्ति कैसे की जाती है उसका एक आदर्श खड़ा कर देते हैं, और वो है चैतन्य महाप्रभु। कल मैं बता रहा था, कुछ लोग थे उस मीटिंग के अंदर, कि जब प्रभु रामचंद्र के रूप में धनुष बाण लेकर भगवान राक्षसों का वध कर रहे थे, इतने शूर थे भगवान और इतने हाई स्पीड थे कि जब अपने तोड़ी से बाण निकालते, धनुष पे लगाते, धनुष खींचते तो धनुष बाण छोड़ते, दूसरा बाण निकालते, वही करते, तो वो जैसे पंखा घूम रहा है ना, पंखा ऐसे दिखता नहीं है, खाली एक गोल सर्कल दिख रहा है, लेकिन सर्कल है क्या वो, खाली तीन पत्ते उसके अंदर, लेकिन वो जब फास्ट घूमते हैं तो आपको एक सर्कल दिखाई पड़ता है खाली। उसी प्रकार से भगवान के हाथ ऐसे दिखाई पड़ते थे, हाथ दिखाई नहीं पड़ता था, कब उठा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, कब मार रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। और कहते हैं कि एक घंटे के अंदर उन्होंने 14,000 सैनिकों को मार दिया। कभी जब शूर्पणखा आई थी ना, तभी शूर्पणखा आई थी, उन्होंने प्रपोजल दिया, प्रभु ने नहीं बोला उसको, तो उसका आया, उसको नाक कान काटा ना, उसको अपमान हो गया उसका। तो 3 महारथी भाइयों को लेकर आई, खर, दूषण और त्रिशिर। वो इतने महापराक्रमी थे कि देवताओं में से कोई भी देवता उनके वध करने के लिए सक्षम नहीं था, और उनको रावण ने जनस्थान यानी नासिक में, वो जो जंगल है ना दंडकारण्य, वहां पर रखा था। वहां पर सारे ऋषियों को कष्ट देना, तकलीफ देना, हैरास करना, आतंकवाद करना, वो उनका काम था। एक बहन और 3 भाई और साथ में 14,000 सिद्धि प्राप्त करने वाले राक्षस थे उसमें। तो जब नाक और कान काट दिया तो वो भाग गई और तीनों को लेकर आई उकसा कर। वो तीनों अपनी पूरी सेना को लेकर आए और क्या देख रही है वो, उसकी आंखों के सामने केवल 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर 14,000 सैनिक धराशायी हो गए और ये तीनों भी धराशायी हो गए। तो वो भाग के गई वहां पर रावण के पास, और वर्णन की जा रही है वो ऐसे थे, कब बाण निकालते, कब चढ़ाते, कब खींचते, कब छोड़ते, कब निकालते, कब छोड़ते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतने वीर है वो। तो कौन है वो, 2 मानव के पुत्र है। क्या मानव के पुत्र, वो तो हमारा ब्रेकफास्ट है। हाँ, हम तो कलेव यानी बाल भोग करते हैं सुबह का मानव के मांस से, तो ये मानव ऐसे नहीं है, ये अद्भुत मानव है। अरे भैया, खर और दूषण को मार दिया अकेले व्यक्ति ने। तो सीता देवी ना वो राम को कहती है किसी प्रसंग में कि आप तो कितना निर्दय हो, इतना निर्दय होकर आप सबको मारते हो, मतलब लोगों को पता भी चलता नहीं कब बाण निकल के कब घुस जाता है किसके अंदर, इतना स्पीड में मारते हो, थोड़े तो दया क्या करो। तो प्रभु ने उनका वादा किया कि अगले जन्म में आऊंगा ना तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मतलब वो निकालना, लगाना, खींचना और लोगों को अंदर घुसाना नहीं करूंगा। तो अगले दिन में कहा क्या बनकर आए वो? हाँ जोर से बोलो, इतना कमजोर आवाज बोलेगा सुनाई कैसे पड़ेगा उनको, बोलो। अगले जन्म में वो कृष्ण बनकर आए। जब वृंदावन में रहे तो आप मुझे बताइए पुतना का वध उन्होंने कौन से शस्त्र से किया? बोलो आप लोग, बोलो जरा बोलो, प्लीज स्पीक। कौन से शस्त्र से पुतना का वध किया? सोच रहे हैं क्या, चाकू निकाला कि तलवार निकाली, क्या निकाला? बोलो ना कुछ तो बोलो। हाँ अरे अपने होठों से खाली स्तनपान किया, खत्म हो गई वो उधर से ही, कोई शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी। और कितनी उम्र थी उनको उस समय? हाँ 2 ईयर्स, 7 महीने, 7 दिन। यस ये सब हमको पता होना चाहिए। अभी आपको पूछेंगे कि शाहरुख क्या नाम उसका, सैफ अली खान के बेटे की उम्र क्या है, सब तुरंत बता देंगे। वो स्टार डस्ट पढ़ते हैं ना रोज, इसलिए मालूम है उनको कौन से हीरोइन को कब बच्चा हुआ, वे कितने महीने का हो गया, अभी वो घुटने बल चल रहा है कि दौड़ रहा है, सब मालूम है आपको। लेकिन कृष्ण के पुतना का वध कभी किया? सब खुजा रहे अपने लंबे लंबे बाल, पता नहीं। कृष्ण ने जब पुतना का वध किया तो केवल 6 दिन के थे वो, ओनली 6 डेज। आंख बंद किया उसको देख के, अरे राक्षसों का वध करने तो आया हूं लेकिन पहला राक्षस तो माता जी है। अरे राम के लिए वैसे ही हुआ मालूम है आपको, जब राम भगवान 12 साल के हुए, गुरुकुल से सीख के आ गए गुरु जी के पास से, और विश्वामित्र मुनि लेने को आए उनको, बोले कि राक्षस जंगल में बहुत आतंक मचा रहे हैं, आप दोनों को आना है, और हमारे यज्ञ को भंग कर रहे हैं, यज्ञ में मल मूत्र डाल रहे हैं और यज्ञ को पूरा खत्म कर रहे हैं हमारे। तो गए वो, तो सबसे पहले कौन राक्षस आया उनके सामने? हाँ ताड़का, और वो माता जी थी, तो वो मारने को तैयार नहीं उनको। तो विश्वामित्र बोल रहे, अरे राक्षसी है वो, माता हो तो क्या हुआ, राक्षसी है वो भयंकर राक्षसी है वो, उसके पुत्र है दो, सुबाहु और मारीच। तो उधर भी भगवान को पहली बार बाण मार के माता जी का ही वध करना पड़ा, ये दूसरी बार आए तो भी वही माता जी सामने खड़ी। आग बंद कर लिया उन्होंने, और आग बंद करके उन्होंने उनका स्तनपान करना शुरू किया, फिर वो उसका देहांत हो गया। फिर कौन आया बताओ, फिर कौन आया? शकटासुर, वो ना एक बैलगाड़ी के रूप में था, भेस बदलकर। आजकल के आतंकवादी के पास कुछ सिद्धि विद्धि नहीं होती है, जो है वो है, लेकिन वो जमाने में राक्षस लोग इतना पावरफुल थे, कभी औरत कभी आदमी कभी सुंदर कभी पुरुष कभी 12 मील का शरीर को सुंदर, 8-6 फीट का शरीर, कुछ भी कर सकते थे वो। पुतना 12 मील का शरीर था उसका, 12 मील का, सोच सकते हैं आप कैसे दिखते होगे वो। 12 मील का शरीर उसने छोटा करके एकदम सुंदर लक्ष्मी जैसा बना दिया, और हाथ में कमल लेकर आने लगे वो, उसका भगवान ने वध कर दिया। तो दूसरा था ना वो राक्षस, भूत था, भूत एक्चुअली भूत के शरीर में था, वो लकड़े के छकड़े पर आकर बैठ गया, उसके बैठने से वो छकड़ा जो है ना वो आधा चक्र जो है ना वो अंदर जमीन में चला गया, और वो छकड़ा कितना बड़ा था पता है, ये हॉल के साइज का था, बैलगाड़ी का पीछे की जगह बैठने की जगह ये हॉल के साइज की थी, क्योंकि वर्णन ऐसा आता है कि यशोदा माई कृष्ण बहुत रो रहे थे, इसलिए उसको सुलाने के लिए वो छकड़े के अंदर लटकता हुआ जो पलंग था उस पर सो गई पूरी वो, और गोद में लेकर भगवान को सुलाया। अभी भगवान छोटे थे लेकिन यशोदा माई तो बड़ी थी ना, अगर वो फुल लेंथ सो गई है तो फुल लेंथ बेड भी होगा कि नहीं होगा, और लिखा है कि वो छकड़े के कोने में था, सोचो आप अगर वो छकड़े के कोने में है फुल लेंथ बेड तो छकड़ा कितना बड़ा होगा। वो छकड़े के ऊपर वो राक्षस आके भूत के रूप में बैठ गया था। जैसे ही भगवान ने ऐसे, वो तब कितने साल के थे, कितने उम्र के थे? 3 महीने के थे, ओनली 3 मंथ्स। और 3 महीने के समय भगवान ऐसे करवट बदलते हैं, बच्चा अपना बदलता ना करवट, तो भगवान ने पहली बार 3 महीने की उम्र में करवट बदली, तो करवट बदली इसलिए एक उत्सव बनाया गया उसका कि भगवान ने करवट बदली। हमारे घर में कैसे होता है, हमारा लड़का खड़ा होने लगा तो सब ताली बजा के सबको बताते अभी खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। हां इथे इथे माऊली काय म्हणतात त्याला, काय म्हणतात मराठीमध्ये काहीतरी म्हणतात, इथे इथे माऊली काठी घेऊन धावली. वो क्या करते हैं, सेलिब्रेटिंग, अपना बच्चा अभी चलने लगा है उसको चलाने के लिए वो कुछ कुछ बोलते हैं और उसको दूर खड़ा करके ऐसे ऐसे करते हैं, चलते चल के भाग के मम्मी के गोद में आता है. तो जब भगवान ने करवट बदली तो उत्सव मनाया गया पूरा. वो उत्सव में इतना बिजी थे सब लोग, सब लोग इतने मेहमान आ रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं, श्लोक बजाए जा रहे हैं, नाच कर रहे हैं, फूल फूल उधेड़ रहे हैं, कोई मक्खन खा रहे हैं, कोई मच्छर फेंक रहे हैं, बहुत सारा आनंद ले रहा था. उतने बच्चा जो है ना, बच्चा का क्या मालूम क्या उत्सव है, बच्चा तो थक गया सो गया. माता ने उसको इतने बड़े छकड़े के कोने में जो पलंग था लटकता हुआ उसमें सुला दिया और सो गया, इसलिए तुरंत वापस काम करने के लिए चली गई वो. उतने में बालक उठ गया भूख लगने के बाद, और भूख लगने के बाद उसने क्या देखा, क्या किया, पैर ऐसा खोला अपने कपड़े से और ऐसा झटका पैर को. जब पैर झटका तो वो छकड़े के चक्र को लगा और पूरा छकड़ा जो है ना वो पूरा गिर गया जमीन पर, टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया पूरे बर्तन बर्तन के साथ. इतनी बड़ी आवाज हो गई उसकी, समझो कोई बड़ी चीज गिर गई, कपाट गिर गया सामान के साथ, तो आवाज बड़ी आएगी कि नहीं. वो आवाज सुनकर सब लोग भाग के आए, तो क्या देखते हैं, बालक तो एकदम अच्छा है लेकिन छकड़ा जो है वो पूरा टुकड़े टुकड़े होकर बर्तन के साथ गिर गया है और बालक को कुछ नहीं हुआ है. तो कुछ बच्चे देख रहे थे, तो बच्चे को पूछते क्या हुआ, आपने क्या देखा, बोले कुछ नहीं, उसको भूख लगी कन्हैया को, उसने पैर झाड़े तो उसके पैर के उंगलियों का स्पर्श हुआ उस चक्र को, और चक्र को स्पर्श होते ही पूरा गाड़ी जो है वो टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गया. तुरंत माँ को उठाया गोद में, अरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ, लकीली बच्चा बच गया, अगर उसके ऊपर बर्तन गिरते तो ऐसे लोग कल लोग सोच रहे हैं. तो क्या लगा कि भगवान ने मारा, कुछ बाण मारा कि क्या किया, खाली पैर का स्पर्श किया. उसके बाद कौन आया, एक साल का बर्थडे हुआ ना भगवान का, फर्स्ट बर्थडे, फिर उत्सव. वृंदावन में क्या है, उनको बहाना ही चाहिए उत्सव बनाने का, एक साल हो गया तो फिर उत्सव, फर्स्ट बर्थडे. तो फर्स्ट बर्थडे में क्या हुआ, इतना धूमधाम से उत्सव चल रहा था, वो बीच बीच में मालूम है ना, छोटा बच्चा तो बार बार में मेहमान आ रहे हैं, उनको नाश्ता दिया जा रहा है, खाना खिलाया, बीच में बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, बच्चा रोता है, उसका पैटी बदली करना पड़ता है, उसका सब कुछ करना पड़ता है ना, वो चलते रहता है, उत्सव भी चल रहा है. तो बीच में बच्चे को गोद में लेकर पिला रही है, अचानक वो बच्चा श्री कृष्ण इतना हैवी हो जाता है, इतना हैवी होता है कि वो अपने गोद में उसको रख ही सकती नहीं. समझो आपके गोद में आकर कुछ 100 किलो वजन रख दिया तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे ना, थोड़ा उसको सहन नहीं कर पाएंगे. तो अचानक बच्चा इतना कोमल मक्खन जैसा बच्चा अचानक हैवी कैसा हो गया, उसका उत्तर नहीं मिला, लेकिन हैवीनेस जो है ना वो सहन नहीं कर पाई, तो उनने उसको नीचे कर दिया बच्चे को ऐसा, बिकॉज इतना पेन होने लगा उनको, नीचे करने लगा. तो वहां से उठकर चली गई वो. उसको भी बाद में आश्चर्य हुआ कि मैं मेरे बच्चे को गोद में से उठाकर नीचे करके चली कैसे गई, ऐसा खुद प्रश्न पूछ रही है वो, लेकिन उसको पता नहीं चला, इतनी बिजी हो गई वो चली गई. उतने में एक राक्षस आया, ऐसा आदमी बनकर नहीं आया वो, तूफान बनकर आया. उसको क्या कहते हैं मालूम है, झंझावात, वो गोल गोल घूमता है, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, वावटड़, वावटड़ और क्या बोलते हैं, चक्रीवादल, झंझावात, वैसा ऐसा गोल करके पूरा धूल को ऊपर उड़ा ले जाता है. कुछ समझ में आता नहीं, क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, किधर सामने कौन है, कुछ समझ में आता नहीं, इतनी धूल उड़ती है कि अंधकार हो जाता है पूरा. तो वो रूप में आया था राक्षस, और उस चक्र में बालक को उठाकर वो आकाश में कई मील ऊपर चला गया. अभी इतना नन्ना सा बालक, एक साल का, और इतना भयंकर राक्षस आकाश में, किधर बहुत दूर, कितने तरी मील दूर है, कंधे पे बालक है. बालक ने क्या किया, वो बालक ने उसकी गर्दन पकड़ ली, ऐसी दबाई गर्दन कि वो राक्षस आकाश में चिल्लाने लगा और वहां से धाड़ करके मर के जमीन पर गिर गया, लेकिन थोड़ा गोकुल के बाहर गिर गया, गोकुल के अंदर नहीं गिरा और मर गया. इस बार भगवान ने कौन सा शस्त्र का उपयोग किया, क्या क्या, इस तरह से बहुत सारे राक्षस आए, अगासुर के शरीर में गए, शरीर को बढ़ा लिया, एक मुक्का मारा और शरीर से तोड़कर बाहर आ गए. शस्त्र का उपयोग किया गया नहीं. घोड़ा बनकर राक्षस आया केशी, उसको कैसे मारा, अपना हाथ है ना उसके मुंह में दे दिया पूरा, और मुंह में हाथ देने के बाद हाथ को इतना बड़ा किया और गर्म उष्ण कर दिया तप्त लोहे की तरह, और बढ़ा दिया उसको थोड़ा चोकअप कर दिया, और चोकअप होकर वो खत्म हो गया। तो राधा रानी क्या बोलती है, अभी मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। कंस को किससे मारा उसने? धनुष बाण से मारा, तलवार से मारा, बताओ। हाँ आप लोग बोलो ना, कंस को कैसे मारा? आपका बेबी आपको पूछ रहा है कंस ने कंस को कैसे मारा। मम्मी बोल रहे मुझे पता नहीं, पापा को पूछो। कंस को पहले एक मुक्का मारा बस, इतने भयंकर राक्षस को 7 साल के 10 साल के बालक ने एक मुक्का मारा और कंस खत्म। इतना बड़ा हाथी था कोलहापीड, उसके खुद के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, उसका दांत ही उखाड़ दिया पूरा, वो दांत से घुसा के खत्म कर दिया उसको। फिर दूसरा भी उखाड़ दिया, एक भैया को दिया, एक खुद दिया, कंधे पे लेकर आ गए अखाड़े में कंस के सामने। फिर 5 राक्षस पैदा हो गए, चाणूर मुष्टिक कूट शल और तोशल। लोग बोल रहे ये भी कोई मैच है क्या, इतने कोमल कोमल बच्चे, इतने पहाड़ जैसे राक्षस, ये कोई मैचिंग है? ये अच्छा नहीं है ऐसा, इक्वल लोगों को फाइट करा उनसे, ये पहाड़ जैसे राक्षस तो चकनाचूर कर देंगे उनको, ऐसे बोल रहे हैं। उतने में ये बोल ही रहे ऐसे, ये अच्छा नहीं है, ये अन्याय है, ठीक नहीं है, ऐसा कोई स्पर्धा नहीं होती है, ऐसे बोल ही रहे औरत मिलकर। उतने में भगवान ने और बलराम जी ने मिलकर सारे 5 का खात्मा कर दिया। फिर कंस को खींचा बाल पकड़ के और मुक्का मार के खत्म कर दिया। तो राधा रानी क्या बोलती है, अच्छे हो तुम, पहले धनुष बाण लेकर आए थे और होलसेल में सबका वध कर रहे थे, अभी बिना शस्त्र के वध कर रहे हो, मतलब आपकी दया के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो भगवान बोले ठीक है, अगली बार ना आऊंगा तो मैं किसी का वध ही नहीं करूंगा, समझा ना आपको। तो मैं कल इस बार पर चर्चा कर रहा था कि वही सीता वही राधा रानी है, वही डिफरेंट नहीं कोई, वही लक्ष्मी है, वही रमा है, वही सीता है, वही राधा रानी है, एक ही स्वरूप अलग अलग रूप में आता है, एक ही व्यक्ति। तो एक एक अवतार में उसी व्यक्ति ने बताया शस्त्र मत ग्रहण करो, तो बिना शस्त्र के आकर वध तो कर दिया सबका। तो बोले अभी तुम वध करना छोड़ा नहीं है, कितने निर्दय हो तुम, कितने क्रूर हो। तो बोले ठीक है, अगली बार जब आऊँगा ना तो शस्त्र वस्त्र लेकर ही नहीं आऊँगा, और किसी को मारूंगा भी नहीं, किसी का वध नहीं करूंगा। और वो कौन सा अवतार है? वो चैतन्य महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु। इस अवतार में भगवान ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई जादू नहीं दिखाई, कोई सिद्धि नहीं दिखाई, कोई चमत्कार नहीं किया। और बहुत सारे पापी लोग आए, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा इसलिए बता रहा हूं, लेकिन इसके बाद में कोई पूछेगा तो बताना नहीं कि मुझे पता नहीं करके। 2 राक्षस आए थे, हिरण्याक्ष और कौन, हिरण्यकशिपु आए थे ना, वो दोनों का वध किया वराह भगवान ने और नरसिंह भगवान ने। फिर वो दोबारा आए, आए कि नहीं आए, कौन बनकर आए बताओ? रावण और कुंभकर्ण बनकर आए हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नोट दिस, कि वही 2 जन, उनको वरदान था कि उनको 3 जन्म लेना पड़ेगा पृथ्वी पर, तो पहले जन्म में हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बनकर आए, अगले अवतार में अगले जन्म में कौन बनकर आए? रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और फिर राम ने ही वध किया उनका। फिर कृष्ण के अवतार में कौन बनकर आए? वो शिशुपाल दंतवर्क वक्र। शिशुपाल तो जन्म से ही द्वेषी था भगवान का, जन्म से ही गाली देते थे, जन्म लिया उसने भगवान को, इतना द्वेष था उसके अंदर। तो कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का भी वध किया और दंतवर्क का वध किया, और वो चौथी बार भी आए, वो कौन थे? जगाई और मधाई। कलयुग में, हमारे कलयुग में 400 पहले की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है वो, कलयुग के अंदर 500 पहले वही दोनों जो 3 आ चुके थे वो चौथी बार भी आए, लेकिन इस बार भगवान ने उनका वध नहीं किया, इस बार उनको भक्त बना दिया, इतना बड़ा भक्त बना दिया कि जगाई जगदानंद गोस्वामी बना और मधाई माधवानंद गोस्वामी बना, और आज उनको संत के रूप में माने जाते हैं, उनकी समाधियां भी वहां पर नवद्वीप धाम में बनाई गई है। तो ये सब चमत्कार का कारण कौन है? तीन बार आए तो तीन बार वध किया गया, चौथी बार उसका वध नहीं हुआ, इसका कारण कौन है? राधा रानी है। इसका कारण राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी बोला उनको इतनी क्रूरता मत दिखाओ, तो उन्होंने दयालु स्वरूप लेकर अवतार लिया। ये हमको समझना जरूरी है। देखो कथा तो बहुत सुनते हैं, पुस्तक में पढ़ सकते हो, ड्रामा देख सकते हो, लेकिन कथा का अगर सार हमको नहीं समझ में आया, हमको लगेगा कि अरे अच्छा है ना, ऑन ड्यूटी पे जाने को मिलता है, बैठने को मिलता है, कुछ काम नहीं करना है, बैठ जाते हैं। लेकिन अगर उस बैठने के पश्चात आपको उस कथाओं का सार नहीं मालूम पड़ा, रहस्य नहीं मालूम पड़ा, याद नहीं रहा कि हमने क्या बताया था उसके अंदर, तो सारी कथा व्यर्थ है। तो मनुष्य जन्म के लिए, अभी देखो हम कथा बोल रहे हैं, यहाँ पर कुत्ता बिल्ली आके बैठ सकते हैं क्या? बैठ सकते हैं, समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। उनके जन्म में, उनके कानों में, बुद्धि में, बुद्धि में व्यवस्था नहीं दी है कि हम जो कहेंगे मनुष्य के रूप में वो सुनेंगे और समझेंगे और वैसा अपना जीवन में उतारेंगे उसको। लेकिन आप कितने भी अनपढ़ रहेंगे या कितने पढ़े लिखे रहेंगे, कितने बड़े कुल के होंगे या खराब कुल के रहेंगे, समझो, लेकिन आपको समझ में आएगा ये, क्योंकि आप लोग मनुष्य हो। तो मनुष्य होने का मतलब है ये सब समझना। मनुष्य होने का मतलब ये नहीं कि हम लोग खाली खाए पिए सोए और प्रजा उत्पन्न करें और दुनियादारी निभाएं, घर गृहस्थी। वैसे घर गृहस्थी तो कुत्ता बिल्ली भी निभाते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं ना कुत्ता बिल्ली, कि नहीं संभालते? हम लोग को एक बार कितने बच्चे होते हैं एक प्रेगनेंसी में? मनुष्य को जनरली एक ही होता है, 99.99, कभी कभी दो होते हैं और कभी कभी तीन होते हैं, बहुत रेयर, उसका पेपर में फोटो आता है, जब तीन हो गए तो पेपर में फोटो आता है, लेकिन आमतौर पे एक ही होता है। कुत्ते को एक बार कितने बच्चे होते हैं? मिनिमम छः, कभी कभी आठ भी होते हैं। चूहे को भी आठ होते हैं, आप सोचो इस बात को। मुर्गी को 12 से 16 होते हैं, एक मुर्गी और 16 पिल्लू घूमते रहते हैं इधर उधर, 16, सोचो आप। तो बेस्ट माता आप हैं कि मुर्गी है कि बिल्ली है कि कुत्ता है, बताओ? जो एक साथ 16 बच्चों को संभालती है वो बेस्ट मदर है कि आप बेस्ट मदर हो? फिर भी आप बेस्ट हो क्योंकि आप मनुष्य हो, आपका बच्चा भी मनुष्य है, उसका जीवन श्रेष्ठ है। वो 16 कुमड़ी के पिल्लों में से 4 अगर ट्रक के नीचे आ गए, कोई किसी को परवाह नहीं होती कि 4 बच्चे गए, खत्म है, क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स? मनुष्य आ गया ट्रक के नीचे तो कितना बड़ा हल्ला मचता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया है। इसलिए ये कथाओं का सार समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत बड़ा दिमाग की जरूरत नहीं है, MBBS वाला या PhD वाला, सादा दिमाग भी काफ़ी है, क्योंकि वो दिमाग वो दिया है आपको भगवान ने, जिसमें ये समझने वाला सॉफ्टवेयर फिट कर दिया है कि आप ये समझ सकते हो। तो राधा रानी इसका कारण है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके वजह से वही कृष्ण, वही परम भगवान जो हरि भगवान है, वो राम बनकर आए, फिर कृष्ण बनकर आए, फिर ऐसे अद्भुत रूप में आए। और उन्होंने क्या किया? गौलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के धाम का जो सर्वोच्च धन है, जहाँ भगवान परमानंद रहते हैं, वो धन उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के कैप्सूल में डालकर हम लोगों को सबको दे दिया है। वही पावर पैक्ड धन जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र के 16 अक्षर में डालकर हम सबको बांट दिया उन्होंने। और क्या किया? पात्रे अपात्रे ना देखिला, स्थाने अस्थाने ना साने, पात्रे अपात्रे ना देखिला, स्थाने अस्थाने, हाँ ना देखिला स्थाने अस्थान, पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान, मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति पात्र है वो देखा नहीं, कोई व्यक्ति अपात्र है वो भी नहीं देखा, कोई स्थान अच्छा है या अस्थान यानी खराब स्थान है, अच्छी जगह है कि खराब जगह है, ये भी देखा नहीं। हर जगह पर हर व्यक्ति को बांट दिया उन्होंने वही धन जो वो गौलोक से लेकर आए थे, और किसी को भी वध नहीं किया। एक ही बार शस्त्र उठाया लेकिन चलाया नहीं, जगाए बधाई को तारने के समय चक्र को बुलाया लेकिन चक्र को छोड़ा नहीं, चक्र वापस चला गया। और वो लोग दोनों मरे नहीं, वो लोग डिवोटी बन गए, डांस करने लगे भगवान के प्रेम में। ये चमत्कार केवल चैतन्य महाप्रभु भी कर सकते हैं। कृष्ण भगवान भी मार देते हैं, थोड़ा समझाते हैं, नहीं समझ में आया तो मार देते है ना। कौरवों को समझाया बहुत, देखो पांच गांव दे दो अच्छा रहेगा, तुम भी जियोगे ये भी जियेंगे, बात खत्म, युद्ध करने की जरूरत नहीं। तो बोलता है कि सुई की नोक पर जितनी जगह होती है उतनी भी नहीं दूंगा। बोला ठीक है, फिर युद्ध करेंगे और सब कुछ छीन लेंगे, आपका सुई भी छीन लेंगे और बाकी सब भी छीन लेंगे, है ना। तो भगवान बड़े व्यवहारी व्यक्ति है, जैसा आप पेश करोगे अपने आप को वैसा करेंगे। आप शत्रु बनकर आएंगे वो शत्रु बनकर आएंगे आपके साथ, आप चीटिंग करेंगे वो भी चीटिंग करेंगे, आप भक्त बनकर आएंगे गले लगाएंगे। इसका एक श्लोक है, क्या बोला सचिन श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जैसे जैसे आप मेरी तरफ पेश करोगे अपने आप को वैसे ही मैं आपको उसका रिस्पांस दूंगा। आप प्रेमी बनकर आओगे प्रेम करूंगा, चीटर बन के आओगे मैं भी चीट करूंगा आपको। भगवान से संभाल कर रहना चाहिए जब कृष्ण के रूप में आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, वो सबके गुनाह जितने करते हो ना आप, वो सब पेट में डाल देते हैं, निगल जाते हैं पूरा, गुनाह स्वीकार ही नहीं करते, छोड़ देते सब और कृपा करते रहते हैं, बस केवल करुणा और कृपा ही करते रहते हैं। उनको एक ही बार गुस्सा आया था जब निताई को मारा गया था, और वो दोनों को मारने आए थे वो, लेकिन निताई की कृपा इतनी अगाध थी कि उसकी करुणा देखकर उन्हें चक्र को भेज दिया वापस और उन पर गले लगाया और सारे पाप एक क्षण में नष्ट कर दिया उनके, जिस वजह से वो पापी बने थे वो सब पाप ही नष्ट कर दिया। पाप नष्ट होते ही वो एकदम परम भक्त बन गए। हम सब लोग ही भगवान के परम भक्त है बाय द वे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर हमारे अंदर के पाप और पाप की प्रवृत्तियां निकाली जाए तो हम सब लोग परम भक्त है भगवान के, परम संत है सब लोग। वो था ना ऑपरेशन करने वाला सर्जन, आपके अंदर बड़ा ट्यूमर है अंदर, वो क्या करता है काटता है ट्यूमर निकाल के फेंक देता है। डॉक्टर बीसी शाह ने अभी क्या किया मालूम है आपको, कुछ 30 इंच का बालों का गोला पेट से निकाला किसी की, 30 इंच मतलब कितना होता है 2.5 फुट का होता है, और बाल से बना हुआ पूरा गुंता गुंथ पेट के अंदर फंसा हुआ था वो। कितना कष्ट हुआ रहेगा वो पेशेंट को, उसका अन्न ना आगे बढ़ रहा है, ना उसको पोषण हो रहा है, ना वो बाहर निकल रहा है, ना अन्न को आने ना आने दे रहा है, ना शरीर कमजोर होते जा रहा है। कितने कष्ट, दर्द कितना हो रहा है, इतना बड़ा 12 फुट का बालों का गोला इतना लंबा, लेकिन जैसे ही उसको निकाल दिया एकदम व्यक्ति फ्रेश हो गया, आंतरे भी फ्रेश हो गई, रास्ता भी क्लियर हो गया और अन्न भी जाने लगा, सब कुछ बढ़िया हो गया एकदम। तो चमत्कार क्या हुआ, खाली वो के बालों का जो गोला था ना उसको निकाल के बाहर फेंक दिया तो नॉर्मल हो गया। तो हमारा नॉर्मल का मतलब क्या है, नॉर्मल स्थिति में हम लोग सब परम संत हैं। आप सोचो इसके बारे में, हमारी सबकी नॉर्मल स्थिति यह है कि हम सब लोग परम संत हैं, लेकिन अभी दोषों से भरे हुए हैं, पाप की प्रवृत्ति से भरे हुए हैं, पाप कर रहे हैं, पाप का फल भोग रहे हैं, इसलिए हम जो भी है आज है। लेकिन भगवान ने एक बार अपना ऑपरेशन कर दिया और एक साथ में होलसेल में सब निकाल के बाहर फेंक दिया तो बचा क्या, परम संत वही बचेगा। गांव में मालूम है, गांव में अपने गए होंगे हम लोग, वो चूल्हा में कोयला होता है, खाना बना के हो गया तो वो छोड़ के चले जाते हैं ऐसे, फिर आप 1 घंटा बाद आओगे तो क्या दिखेगा आपको, उसके ऊपर राख जमी दिखे पड़ेगी। अभी वो बोलेगी अरे तुम अभी आ गए क्या, चलो आपको गर्म रोटी बना देती हूँ, तो वापस चूल्हे पे आएगी और वो बोलना बेलने लगेगी, फिर एक नली लेगी, फिर क्या करेगी, क्या करेगी, हुक मार के क्या करेगी, वो राख को निकाल देगी। जैसे राख निकाल दिया तो क्या प्रकट होगा, अग्नि, मतलब वो अग्नि था केवल राख जमा हो गई थी उसके ऊपर। जैसे ही राख को निकाल दिया गया वो जो अग्नि था, अग्नि था पहले से, वो दोबारा प्रकट हो गया। वैसे ही वो अग्नि कैसे था कोयले के अंदर, वैसे हम लोग सब लोग परम संत हैं सब लोग, लेकिन अभी हम कवर हो चुके हैं उस पाप की राख से। जब तक राख है कोई संत आकर फुंकर नहीं मारता है हमारे ऊपर नली से, तब तक हम लोग ऐसे ही रहते हैं। और एक दिन क्या होता है, फिर बहुत दिन तक कोई अगर कोयले को फुंकर नहीं मारा और 2 दिन के बाद लौट के आए तो क्या होगा, कोयला राख पूरी हो जाएगी, कंप्लीट राख, फिर कितना ही भी फूंक मारो केवल राख उड़ेगी, अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो कोयले के अंदर की राख सही समय पर जगाने के लिए क्या चाहिए, व्यक्ति आकर उसमें नली से फूंक मारना चाहिए। तो पूरी राख होने के पहले अग्नि प्रकट हो जाएगी। हमारा भी ऐसा है, हमारी गली को फूक मारने वाले कौन है? वैष्णव भक्त हैं। सही समय पर आएंगे और फूक लगाएंगे हमारे पर, तो हमारी राख उड़ने लगेगी और धीरे धीरे हम अपने अंदर जो परम संत छुपा हुआ है उसका अनुभव करने लगेंगे कि मैं कौन हूँ। जो लगता है मैं हूँ वो नहीं हूँ, मैं कुछ अलग ही हूँ, ये अनुभव होने लगता है। और ये कृपा चैतन्य महाप्रभु की। वे आखिर में 10 मिनट में आपको मैं एक बात बताऊंगा, जो आप सब लोग ध्यान से सुनना। हाँ, नींद आ गई तो खड़े हो जाना, लेकिन सुनना ज़रूर। और जो मोबाइल में देख रहे हैं उसको मोबाइल में मत देखना, कान से सुनना, ठीक है? तो वो क्या बात है, चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना हम लोग रोज रोज गाते हैं। यहाँ पर कौन सी प्रार्थना गाते हैं बोलो? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ठीक है, अभी लास्ट श्लोक बोलिए। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सैव नापरः। ठीक है, अभी बहुत लोगों को ये नहीं आया बोलने को, क्योंकि इसका कारण एक ही है, आप लोग प्रार्थना में आते हो वो खड़े होते हो, कभी बोलने का प्रयास नहीं करते, इसलिए आपको बाय हार्ट नहीं है। लेकिन हमारे में से किसी भी व्यक्ति ने उसको बैठकर बाय हार्ट नहीं किया है, केवल रोज आकर वहाँ खड़े होकर सुन सुन कर आपको वो मुखोद्गत हो गया है, बाय हार्ट हो गया है। और जिनको नहीं आता है वो लोग ध्यान से सुन लो, चैतन्य भगवान महाप्रभु के चरित्र में लास्ट अध्याय में लिखा गया है कि जो व्यक्ति रोज बिना भूले कम से कम एक बार इस चैतन्य शिक्षाष्टक का पठन करेगा, गाएगा, वो अपने जीवन के अंत में भगवत प्रेम प्राप्त करेगा। यह अद्भुत बात मैंने राधा गोपीनाथ प्रभु से सुनी थी, चैतन्य चरितामृत के आखिरी खंड के आखिरी अध्याय में लिखा है। और ये जरूरी नहीं कि आपको उसका अर्थ मालूम पड़े, अर्थ मालूम पड़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन अर्थ नहीं मालूम पड़ने पर भी आप गाते रहेंगे तो भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको विनती कर रहा हूँ, आपको ये बात याद नहीं है, रोज प्रार्थना में खड़े रहो और कुछ देर पेपर पकड़ो, बाद में छोड़ दो पेपर को, अपने आप याद आएगा। तो आखिरी श्लोक मैंने आपसे बुलवाया, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि हे भगवान, आप अगर चाहे तो हमको कुचल सकते हो, हे भगवान चाहे तो आप गले लगा सकते हो, चाहे तो ठुकरा सकते हो, अपना बना सकते हो या ठुकरा सकते हो, लेकिन मैं हमेशा आपका ही रहूंगा, आप जो चाहे व्यवहार कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो या बुरा कर सकते हो, जो मर्जी है कर सकते हो, लेकिन मैं आपका हमेशा भक्त बना रहूंगा, आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे आराध्य प्राणेश्वर बने रहेंगे। अभी आप बोलिए, किसी ने आपको कुचल दिया उसकी पूजा कर सकते हैं आप? वो तो आपका जिंदगी और शत्रु बन जाएगा। लेकिन ये कुचले जाने पर भी बोल रहे हैं कि हम आपके भजन करते रहेंगे, अभी ये कैसे करने का? कुचल जाने की संभावना है लेकिन फिर भी इनका भजन करना है, ये कैसे कर सकते हैं? उसका एक ही राज है, वो राज बताकर मैं आज का प्रवचन समाप्त करूंगा। वो राज यह है कि अगर आपको ये पता चलता है कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है, नंबर वन, नंबर टू, उनकी इच्छा से जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये दो बातें अगर आपको समझ में आई तो कुचले जाने पर भी आप उनको ही पूछते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जो भी हो रहा है वो उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, और जो भी वो करते हैं अपनी इच्छा से वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं। ये दो बातें अगर किसी को समझ में आई, उसके लिए PhD MBBS MD IT कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको समझ में आता है किसी के संग की वजह से, कहीं सुनने की वजह से या श्रद्धा की वजह से, अगर आपको समझ में आता है तो आप भी ऐसा कह सकते हो। और जो व्यक्ति ऐसा कहता है कष्ट में भी उसको भगवान अपना बना लेते हैं। भगवान को किसी को अपना बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपना किसको बनाते हैं? वो सबको ना होलसेल में नहीं बनाते, उनको अपना बनाते हैं जो उन पर श्रद्धा रखते हैं। समझा, आपका ऑपरेशन होना है, अभी वो आदमी का केस ले लो जिसके अंदर बाल का गोला था, है ना, उसको अच्छा होना है, उसको कष्ट हो रहा है, उसको अच्छा होना है, उसको कष्ट हो रहा है, लेकिन वो कंसेंट नहीं दे रहा सर्जरी का। डॉक्टर बोल रहा है सर्जरी करके निकाल दूंगा इसको, कंसेंट दो, साइन दो। नहीं नहीं नहीं, मैं साइन नहीं दूंगा, आप मुझे काटोगे, मैं साइन नहीं दूंगा आपको। तो उस पेशेंट का दुख दूर होने का सीक्रेट क्या है बताओ? आप ही बताओ, आप हॉस्पिटल में काम करते हो। उस पेशेंट को अपने दुख से मुक्त होना है तो उसको क्या करना चाहिए? कंसेंट ना चाहिए, साइन देना चाहिए, सर करो आप, साहब मेरा जो करना है करो, मैं आपको पूरा श्रद्धा रखता हूँ, आपको पूरा भरोसा है मुझे, ये लो साइन देता हूँ करो। तो पहले तो आपको बेहोश कर देगा वो, करेगा कि नहीं बेहोश? मतलब बाप रे, कुछ दिखाएगा नहीं करने समय, पहले तो नॉकडाउन कर लिया पूरा। लेकिन क्योंकि आपको उनके ऊपर श्रद्धा है इसलिए आपको कोई इतराज नहीं है। अभी मैं बैठा हूँ, कोई मुझे बेहोश करने के लिए तो मैं चिल्लाऊंगा ना, बेहोश को कर रहे भाई, मैं कथा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अगर पता है मेरे पेट में गोला है, उसको निकालना है, वो मेरा ऑपरेशन ये करने वाला है, तो मैं बोलूँगा ये लो हाथ मेरा, तैयार करो हाथ को सेव करके अच्छी तरह से, और दवाई डाल दो, बेहोश कर दो, और पेट फाड़ो मेरा, जितना चाहे उतना फाड़ो, और फाड़ के उसको निकालो बाहर और ठीक कर दो मुझे। और इसमें से कोई कुछ देखने वाला नहीं है, वो उसको एक बार दवा दे दिया, ओ गया बेहोश, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, कहाँ खोल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, कहाँ पर वापस सिला रहे हैं, उसको कुछ मालूम नहीं है। वो सारा चीज़ होने के बाद में, दो घंटे के बाद में हाँ करके उठेगा वो, लेकिन उस समय क्या होगा, सारा तकलीफ खत्म है उसका, इतना बड़ा गोला भी बाहर है, उसको समझा भी नहीं है, निकाल दिया गया उसका। इसमें से क्या सीखते हैं हम लोग? एक ही चीज सीखते हैं, सर्जन के ऊपर विश्वास। एक बार आप सर्जन के ऊपर विश्वास दिखाते हो तो सर्जन की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको मुझे ठीक करना है, मैं गलती नहीं कर सकता। सावधानी पूर्वक आपको बेहोश करेगा, करवाएगा और फाड़ेगा, वो निकाल देगा, वापस सारे सर सिलाएगा, ठीक से आपको दवाई देगा ताकि इन्फेक्शन ना हो, सब कुछ करके आपको ठीक कर देगा वो। भगवान भी उसी तरह से, हमारे अंदर वो गोला अटका हुआ है इधर, और हम लोग साइन देने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे भगवान? लेकिन दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, किसी ने बताया अरे तो इतना चिल्ला रहा है, डॉक्टर को बोल जरा दिखाओ और उसको ठीक करने को बोल, साइन दे उसको, तो साइन दे देगा वो, साइन देगा तो ठीक हो जाएगा। उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बहुत पीड़ा होती है, उस समय भगवान पर श्रद्धा दिखाएंगे, बोलेंगे भगवान मैं जानता हूँ मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हैं मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे अपना बना लो, मेरी पूरी श्रद्धा है आपके ऊपर। तो भगवान ऐसे केस को अपनी गोद में लेते हैं और उसका सारा दर्द निवारण करते हैं। माँ की जैसे, माँ कैसे होती, बच्चा जब रोता रहता है गोद में तो पूरा गोद में लेके उसको ठीक करती है। अच्छा इधर जख्म हुआ क्या, मैं पट्टी लगाती हूँ, चिंता मत करना, मैं पैर दबाती हूँ, खेल के आए हो, बहुत दर्द हो रहा है पैर में, नींद नहीं आ रही है, मैं आपको पैर दबाती हूँ, चिंता मत करना। कारण क्या है? क्योंकि बालक माँ की शरण ग्रहण करता है, इसलिए माँ को भी जिम्मेदार महसूस होता है, जिम्मेदारी कि ये बालक ने मेरी शरण ली है, मेरा आश्रय लिया है, छोटा सा है बेचारा वो, मेरे बिना उसका कोई नहीं है, मेरे बिना किसी को दिखता भी नहीं है वो, मेरे पास ही दौड़ के आता है, तो मेरी ही जिम्मेदारी है, पापा की भी नहीं है, मेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि तो मेरे गोद में भाग के आता है वो। इसमें होशियारी किसकी है? बालक की है, उसने माता की 100% शरण आश्रय ग्रहण किया है, इसलिए माता भी जिम्मेदार बन जाती है, सब कुछ छोड़ के उसको देखने को आती है। हमको क्या करना है? अगर हमको कुचलते हुए भी, कष्ट भोगते हुए भी अगर भगवान को ये कहना है कि मैं आपका हूँ, तो पहले आपको अपने अपने आप को भगवान के चरणों में शरण देना पड़ेगा। जिस समय आप भगवान को कहेंगे हाँ भगवान मैं आपका हूँ, उस समय भगवान भी आपके हो जाते हैं। रामायण में भगवान ने वादा किया हुआ है, जब विभीषण को लिया ना उन्होंने, विभीषण को लिया ना, बड़ा डिस्कशन हो गया उस समय, ले लो कि मत लो, ले लो कि मत लो, राक्षस का भाई है, उसका दूध बन के आया होगा शायद, गुप्तहेर बन के आया होगा, वो घातक है, ऐसा है वैसा है, मत लो उसको, मत लो मत लो मत लो। आखिर में हनुमान ने बोला नहीं ले लो उसको, मैं उसको देखा हूँ, जब मैं सीता को देखने गया था ना तब मैं इसको देखा हूँ, रावण के राज्य में बैठे हुए भी राम का नाम ले रहा है वो, इतनी हिम्मत है उसके अंदर, मैं आपका भक्त है इसको आप ले लो। तो फिर वो लेने के बाद प्रश्न करते हैं जाम्बुवंत और सुग्रीव, क्या ऐसे कैसे लिया आपने उसको? तो प्रभु रामचंद्र ने एक जवाब दिया है, वो मेरा लास्ट लाइन होगा आज का। प्रभु रामचंद्र ने कहा है उनको कि विभीषण क्या, अगर रावण भी आएगा ना आज माफी मांगने के लिए तो उसको भी शरण दूंगा मैं, उसका भी वध नहीं करूंगा। रावण की क्यों बात कर रहे हो? कोई भी व्यक्ति कभी भी मेरे सामने खड़ा होकर अगर एक वाक्य बोलेगा, क्या वाक्य है वो, कि हे भगवान मैं आपका हूं, वो शायद भूल जाएगा उसने क्या कहा था, लेकिन मैं कभी वो बात भूलूंगा नहीं कि उसने एक बार कहा था मैं आपका हूं। तवास्मिति, तव अस्मिति मतलब मैं, तव अस्म इति मैं आपका हूं, ये अगर एक बार किसी व्यक्ति ने बोला होगा तो मैं जिंदगी भर उसका ऋणी रहूंगा, और वो भूल जाएगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। ये भगवान का वादा है, भगवान हमारे ऐसा नहीं है, भूलने वाले जीव नहीं है। तो भगवान ने रामायण के राम अवतार में परम वादा कर दिया हम लोगों से। हमारे पर भी क्या, हमारे पर जिम्मेदारी है, भगवान के सामने जाओ रोज और उनको बोलो मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, बस दिल से बोलो, फिर आप देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कमी भगवान में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हम लोग अभी तक उनकी शरण ग्रहण नहीं कर चुके हैं, अभी तक उनका आश्रय नहीं लिया है, अभी तक हमने नहीं कहा है कि मैं आपका हूं, तो वो क्यों आपको अपना बनाए? आपको नहीं बनना है तो थोड़ी जबरदस्ती है, जब बनना हो तो रेडी हूं बनाने के लिए, लेकिन आप आते ही नहीं हो तो मैं क्यों आपके पीछे भागूं, बनो बनो बनो, मेरा बनो मेरा बनो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में और आपके पीछे भी भाग रहे हैं, वो जाके विनती कर रहे हैं, हाँ कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, क्या बोले बोलते वो, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, भाग रहे हैं आपके पीछे, कलयुग के लोगों के पीछे भाग रहे हैं और उनको नाम दे रहे हैं, ले लो यही जीवन है, यही सब कुछ है, यही आपका जीवन का सार है, क्यों यहां भटक रहे हो, ले लो। तो अगले जन्म में वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आके बोलोगे तवा स्मृति, इस जन्म में चैतन्य महाप्रभु के आपके पीछे भाग रहे हैं, ले लो करके, अपना बनो मेरा बनो, थोड़ा डिफरेंट है इस टाइम पे, यही हमारा भाग्य है। तो गौर पूर्णिमा हम लोग इसलिए मनाते हैं कि वो भगवान ने ऐसा करुणा वाला दया वाला रूप धारण किया है कि जिससे वो तुम्हारे पीछे हमारे पीछे भाग के आ रहे हैं और वो कृपा देने के लिए आतुर हैं। तो आइए उनकी कृपा लीजिए। उनका कृपा लेने का मतलब क्या है? जो वो दे रहे हैं धन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको स्वीकार करना, यही करुणा है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। और वो कभी है गौर पूर्णिमा, ये खत्म हो गया।